शांति। शांति वन के विशाल डायमंड हॉल में शांति से बैठकर तपस्या करना और पढ़ाई करने में कितना आनंद आता है, अच्छा लगता है सबको। मधुबन में ये मौका हमें मिलता है पवित्र योगी ज्ञानी आत्माओं के अलौकिक परिवार के संग पढ़ने में बल भी मिलता है। तो हम सबको ये लक्ष्य रखना है कि सभा में बैठना, क्लास में बैठना माना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी से बैठना है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना और पूरी एकाग्रता से हम पढ़ाई करते हैं तो औरों को भी एकाग्र होने में मदद मिलती है। आप सब जानते भी हैं कि अब समय ज्ञान जीने का है, ज्ञान सुनना, समझना, समझाना वो पार्ट बहुत समय से हम प्ले कर रहे हैं, अब ज्ञान जीने का समय। कई सोचते हैं कि बाबा ने ज्ञान देकर पूरा कर दिया, मूल ज्ञान का कोर्स भी हो गया, मूल सत्य ज्ञान के आधार पर कितनी ऊंची अलौकिक स्थिति हम बना सकते हैं उस ऊंचाई का ज्ञान भी बाबा ने दे दिया। हम सब ने भी सालों से साकार मुरलियां, व्यक्त मुरलियां पढ़कर खुद को भी ज्ञान से भरपूर कर लिया, अब क्या करना है। ये जो समय है वो ज्ञान जीने का समय, ज्ञान के अनुरूप जीवन कैसा हो सकता है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने का ये समय है। देखो कलयुग के अंत पतित शूद्र बन जाते। आज भी बाबा ने कहा ना कि बाजोली के ज्ञान से सहज समझ में आता है, बाबा के बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हम शूद्र से वैश्य बनते हैं, तमो प्रधान से रजो स्थिति में आते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, तो तमो प्रधान से वैश्य रजो स्थिति में आते हैं। और रजो स्थिति में दो कमजोरियां होती है, धन साधन का लोभ और संबंधों का मोह। वैश्य वर्ण में ये दो कमजोरियां होती है। जब हम और पुरुषार्थ करके लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करते हैं, संतुष्टता तृप्ति अनासक्ति न्यारापन ये जब धारणाएं आती है, तो लोभ और मोह पर हम विजय पाते हैं, हम रजो से सतो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। क्षत्रिय स्टेज जिसको बाबा कहते हैं, लोभ और मोह पर विजय पा लेते, क्षत्रिय स्थिति सतो सामान्य स्थिति में दो कमजोरियां अहंकार और क्रोध। हम अपने आप को भी देखते जाएं, सेवा का सहयोग देने का निमित्त बनने का मुख्य बनने का अनन्य बनने का अहम आ जाता है, और अहम है तो गुस्सा भी आएगा, जहां भी अपमान की फीलिंग आएगी तो गुस्सा आ जाता है, पर और सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा कराते हैं कि तुम निमित्त हो, निर्माण हो, आखिर तो बाबा ही करण करावन हार है, सब कुछ करके भी अपने आप को छिपाया, ऐसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं, पूरे यज्ञ को संभालने के बाद भी मैंपन और मेरापन नहीं, दिन रात बाबा बाबा, ऐसी दादियां भी हमारे सामने हैं, हम सब नंबरवार होते भी बहुत प्यार से हमारे बड़े हमें चलाते हैं, तो हमें भी अंदर ये महसूस आते हैं, जब हम अहंकार और क्रोध पर विजय पाते हैं, तब हम सतो सामान्य से सतो प्रधान स्थिति में आते हैं, सही अर्थ में ब्राह्मण बनते हैं, तब सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। आज भी बाबा ने कहा, अगर पक्के ब्राह्मण हैं तो कोई भी शूद्रपने की एक्ट ना हो, आज कहा ना बाबा ने, तब हम सच्चे ब्राह्मण बनते। और ऐसे ब्राह्मणत्व में, ऐसे ब्राह्मणपन में अंत तक हम चले जिए तो हम सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा ना विराट रूप याद रहना चाहिए, आज ही बाबा ने कहा। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मणत्व में अंत तक चले तब सतयुग में जाकर देवता बने। और ये अंत का समय जिसमें बहुत हमारे सामने बातें आएंगी और आती है, पर हम जरा भी चलित ना हो और हमारा ब्राह्मणत्व अखंड रहे। बाबा ने आज कहा ना कि महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त रहना है। तो ये वो ही समय है, कईयों को रिवर्स होता हुआ आप देखेंगे भी, जो चीजें छोड़ी वो वापस लेने लगे, ऐसे भी आप देखेंगे। कहते हैं ना कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्रसिद्धि की इच्छाएं बढ़ जाती, और वो प्रसिद्धि पाने में कई बार बहुत उल्टा सीधा रास्ता भी हम ले लेते हैं। तो इसलिए ये समय है, हमें बहुत सावधान होकर, और सावधान माना स्वयं पर अटेंशन रखकर, दूसरों को देखने गए तो हम ही जाएंगे, ऊंची स्थिति से हम ही जाएंगे। पर जिनका अपने आप पर और बाबा पर अटेंशन है, कि जो भगवान वाच्य है वो मेरे जीवन में हो, संगम के अंत तक ये टाइटल हम ले सकें कि हम भगवान के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, हर बात में बाबा के सच्चे बच्चे। तो स्वदर्शन, स्वचेकिंग, उन्नति का आधार स्वयं पर अटेंशन देना है। बाबा, बाबा का ज्ञान सामने हो और स्वयं को हमें देखना है। विशेष आज सुख के सागर, बाबा के हम बच्चे, हम कहां तक सच्चे सुखदेव बने। क्योंकि जन्म जन्मांतर से आत्मा सुखी बनने के लिए ही भगवान को कहती रही। यह हर आत्मा की जिगरी इच्छा रहती, आज भी मुरली में बाबा ने कहा सुख और शांति दोनों चाहिए। संगम का समय है जब बाबा आकर हमारी इस इच्छा को पूरी करते। पहले तो हम खुद महसूस करें कि बाबा ने हमें कैसे सुखी बनाया। भगवान कैसे सुखी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब किताब भगवान माफ कर देंगे। हमने जो गलत कर्म करके जन्म जन्मांतर जो दुख के हिसाब बनाए, भगवान उसको माफ कर दे तो वो तो कर्म के सिद्धांत के विपरीत तो हो जाएगा। कोई गलत करे और उनको न्याय से सजा दी जाए और उनको माफ कर दे तो वो सही नहीं होता है। पर बाबा किस तरीके से, तो बाबा ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर सेंसिबल बनाया, समझदार बनाया। सही ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञान या अधूरा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान के कारण है ना, हम परिस्थिति को बात को सही समझ नहीं पाते हैं तो दुखी होते रहते हैं, मूंझते रहते हैं। जैसे कई बार हम बच्चे कहते हैं ना कि ये बात मैं भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती हूँ, बिंदु लगता नहीं, बार बार वो बात मन में आती है। पर जब हम शांति से ज्ञान स्वरूप बनकर खुद के साथ बैठते हैं और उस घटना के बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही मन शांत होता है तो हमें वो कारण समझ में आता है कि ये बात मेरे सामने क्यों आई। कोई हिसाब से आई, बिना हिसाब तो कोई बात आती नहीं है। कोई कारण मिला हमारे तरफ से, तब वो बात आई, तब वो परिस्थिति बनी, तब वो घटना बनी। तो यथार्थ रूप से बात को समझकर खुद की कोई कमी कमजोरी उसमें है उनको महसूस करते हैं, फिर हम उसको फुल पॉइंट लगा पाते। जब तक वो महसूस नहीं करते हैं और दूसरों को ही कारण समझते हैं तो फुल पॉइंट नहीं लग सकते। बाबा कहते हैं ना, बिंदु लगा दो वो नहीं लगता है, पर जब आप खुद अकेले बैठकर शांत बैठकर गौर करते हैं उस बात को कि ये क्यों हुआ, ज्ञान स्वरूप बनकर आदि मध्यांत को देखते हैं तो हमें कारण समझ में आ जाता है, फिर हम फुल पॉइंट लगा सकते हैं और निवारण भी कर सकते। तो सही ज्ञान के कारण हम बिना मतलब जो दुखी होते रहते थे, दर्द उठाते रहते थे, बाबा ने आधा उसमें से हमें मुक्त कर दी, आधी बातें तो उसमें ही खत्म हो गए। हरेक को खुद भी अनुभव होगा कि जब हम शांति से ज्ञान स्वरूप बैठकर आदि मध्यंत गहराई से सोचकर खुद पर और उस बात पर गौर करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। और इस प्रकार बाबा ने सत्य ज्ञान देकर आधे दुख तो वहीं खत्म कर दिए। फिर हमारे मन में किसी के लिए कोई फरियाद नहीं उठती, नाराजगी नहीं रहती। तो हम भी, बाबा कहते हैं ना, किसी को सुखी करना माना बाप का बना देना। जब तक आत्मा परमात्मा बाप से नहीं जुड़ती है वो सेंसिबल और पावरफुल नहीं बन सकती है और तब तक वो सुखी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं सबको सुख का रास्ता बताओ, अर्थात बाप का परिचय दो, बाबा से संबंध जुड़वाओ, क्योंकि आत्माएं तो सब पतित बन चुकी हैं, खुद ही सुखी नहीं है तो दूसरे को सुख कैसे देगी। तो हम सुखी कैसे हुए, बाबा ने सच्ची समझ दी, ज्ञान दिया। अज्ञानता, अंधश्रद्धा है ना, गलत रीत रस्मों से कितना हम मुक्त हो गए। जो लोग ज्ञान में नहीं हैं, आप अपने आसपास परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, कार्यक्षेत्र में आप देखते होंगे ज्ञान नहीं है तो लोग क्या क्या विचारे करते रहते, कितने भटकते हैं, कितने मिसगाइड होते हैं, कितनी अनावश्यक क्रियाएं विधियां करते रहते हैं, कितना धन एनर्जी उनकी खर्च होती रहती और भय और चिंता कितना उसको रहता है। पर बाबा ने हमें ज्ञानी तो आत्मा बनाया, सत्य ज्ञानी तो आत्मा। तो देखो, एक तो हमारे मन में कभी कोई प्रश्न उठते ही नहीं, बात आती है और कारण समझ में आ जाता है। हमें किसी को पूछने की कोई बात ही नहीं रहती, इतना बाबा ने हमें श्रीमत से सद्बुद्धि दी। तो हम सब क्यों, हम अनुभव भी करते हैं, सबका अनुभव है कि ज्ञान में आते ही बाबा ने हमारा जीवन सुखी कर दिया। ये फीलिंग क्यों है? क्योंकि ये चीज स्वामी विवेकानंद ने भी अपने एक चिंतन में कही है कि मानव जीवन के सभी दुख, संघर्ष और घर्षण का कारण आत्मिक अज्ञानता है। इसलिए आत्मा की, उन्होंने कहा है कि उनकी आंतरिक पर्सनालिटी को विकसित करना यही सच्ची सेवा है, और वो प्रैक्टिकल बाबा हम बच्चों से करा रहे हैं। तो ये बाबा का शुक्रिया, हम बच्चों पर उपकार, कितना सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया, और ब्रह्मा बाबा का उपकार, कितना गहरा चिंतन कर मुरली के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया। तो वो ज्ञान स्वरूप स्थिति है ना, वे सभी समस्याओं का समाधान, सभी दुखों का रामबाण इलाज, बस भगवान के बनो, उनके सत्य ज्ञान को धारण करो। इसलिए जब कभी भी कोई अपनी दुख की बातें करते हैं, हम बाबा के बच्चे कहते हैं ना कि भाई आप आओ हमारे केंद्र में, 7 दिन का कोर्स करो, ज्ञान लो, सब ठीक हो जाएगा, कहते हैं ना, क्योंकि ये रियलिटी है, हम सबका अनुभव है। तो आधा दुख तो अज्ञानता के कारण। प्रथम लेसन से ही तो देखो कितना चेंज हमारे में आ जाता है कि देहभान ही वो जड़ है, सभी बुराइयां उससे आती। तो अगर हम दूसरों को भी सुखी बनाना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, तो हमारा उनसे ज्ञान युक्त व्यवहार, हमारे जीवन से, कर्म से, व्यवहार से ज्ञान दिखे, औरों को सही ज्ञान देना, सही सलाह देना जो बाबा ने हमें दी है ना, भगवान ने हर बात की श्रीमत हमें दी है, ब्रह्मा बाबा ने अपनी श्रेष्ठ राय हमें दी है, अगर वो ही दूसरों को हम बताते हैं, व्यर्थ भटकाते नहीं हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे दुखी मजबूर लोग आते हैं, तो कई लोग और उसको घुमाते रहते, वो और दुखी हो जाते। तो हमारा ये कर्तव्य है सही मार्ग बताना, सही ज्ञान देना, सही गाइड करना, सही राय देना, अनुभव बताना, तो हम सुखदेव है और ये बाबा ने हमें दिया है। आज बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा भरपूर है तो काल कंटक दूर है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और सत्कर्मों का जमा खाता बढ़ता है, अपने आप रास्ता साफ होता जाता है। तो लौकिक में जिस परिवार में हम रहते हैं या जहां हम नौकरी धंधा करते हैं, वहां ये महसूसता हो हमारे साथियों की, हमारे परिवार के और सभ्यों की, कि ये हमारे बीच में है, तो ये कोई भी रास्ता निकालेंगे। जैसे कोई व्यक्ति के आने से हर किसी को होगा कि बस ये आ गए ना, अब कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कितनी भी बड़ी समस्या होंगी वो रास्ता निकाल देंगे, सबको हल्का कर देंगे, निश्चित कर दे, निश्चिंत कर देंगे, ऐसी मदद कर देते। तो हम योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, भल दुनिया न जाने न स्वीकारे, पर सत्य हम जानते हैं ना कि हमें भगवान रोज पढ़ाते हैं। तो हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति, हमारा उस परिवार में होना, हमारा उस कार्य क्षेत्र में साथी बनना ऐसा हो कि लोगों को लगे कि बस ये है तो बात मिट जाएगी, समाधान हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, मदद मिल जाएगी। ऐसा हमारा व्यक्तित्व, न कि बात को उलझाएं, लोगों को घुमाएं, ऐसा नहीं। भले आप चाहे ज्ञान से मदद करो, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई धन से मदद करने से ही हम सुख दे सकते हैं, पर जो हमारे पास है, हरेक को अपना पता है कि स्थूल में क्या है, सूक्ष्म में क्या है, पर सबसे बड़ी संपत्ति बाबा ने दी है कि हम शांति रख सकते हैं कैसी भी बात, हिम्मत रख सकते हैं, धीरज रख सकते हैं, बुद्धि शुभ रख सकते हैं, औरों को हिम्मत भर सकते हैं, वो विधि बता सकते हैं, तो उनको मदद मिल जाती है। देखो बीमारी आती है तो खुद को ही सहन करना होता है, परंतु अगर परिवार के सभ्य शुभ भावना है, प्यार है, साथ सहयोग है, तो व्यक्ति को अंदर में हिम्मत रहती, बाकी भोगना तो खुद को ही है। ऐसे हिसाब किताब तो हर एक को खुद ही चुकाने होते हैं, पर हम ऐसी आत्माएं हो बाबा की तरह, मास्टर सुखदाता, मास्टर दुख हरता सुख करता, शुभ भावना से भरे हुए, जो लोग महसूस करें कि ये सही रास्ता बताएंगे। बताते हैं ना कि जहां जहां ऐसे विघ्न आए, जहां राम मूंझ गए, हनुमान ने रास्ता निकाला, ऐसे बताते हैं ना। तो ये हम बच्चों का प्रैक्टिकल दुनिया में हम रहते हैं ना, चाहे सेंटर में कोई बातें आती या परिवार में, ऐसे नहीं उस समय हम भाग जाएं, छिप जाएं कहीं, भाई मदद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। बाबा का हम बाबा के माध्यम हैं, हम बाबा के बच्चे, इंस्ट्रूमेंट है। बाबा तो निमित्त हम आत्माओं के द्वारा ही कराएगा ना, और हमें थोड़ी कुछ करना है, बाबा ही कराता है ना, हमें तो सिर्फ निमित्त बनना है। पर भावनाएं अच्छी हो, वृत्ति कल्याण की हो, तो बाबा हमसे कराएगा। तो यज्ञ में, ईश्वरीय परिवार में, चाहे लौकिक में, हम ऐसी हनुमान महावीर आत्मा हो, जो बाबा कहते हैं ना, असंभव कार्य भी संभव कर दे। ऐसे हम हो जो समय पर साथ दे दे, है ना। सुख किससे महसूस होता है, कि जो समय पर साथ देता है। कहने के लिए तो बहुत सारे मित्र संबंधी है, कहने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर में या भाई बहने आते हैं, पर मैंने देखा है सिर्फ 15-20% होते हैं जो जवाबदारी लेते हैं यज्ञ की, और समय पर सेवा में साथ देते। तो हम सब प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। मैं नहीं कहती हूं कि हमें धन से इतनी, जितना है उतना ही वो तो आप करेंगे, पर उस समय साथ देना, हिम्मत भरना, सही मार्गदर्शन देना, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और समय पर जो ऐसी मदद करते हैं, वो सुखदाता महसूस होते हैं, वो जीवन में याद रहते हैं, ऐसी आत्माओं के लिए दुआएं निकलती, ऐसी आत्माएं दिल पर चढ़ती है बाबा की, और तब बाबा वचन देते हैं कि जो समय पर निर्संकल्प होकर मददगार बनते हैं, उनको अंत तक मदद करने के लिए भगवान बंधा हुआ है। और सच में बाबा मदद करते हैं। एक दो को हम समझकर चलते हैं। स्वभाव संस्कार तो वैरायटी होना ही है, क्योंकि हम कोई कार्बन कॉपी नहीं है ना एक दो की। हर आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार, पर उसको समझकर बाबा ने एक बार वारिस आत्मा की व्याख्या बताई थी, तब भी बाबा ने ये कहा था कि यज्ञ को समझकर नंबरवार आत्माओं को समझकर जानकर भी कैसे निश्चयात्मक बुद्धि से यज्ञ को संभालना चलाना, ये वारस क्वालिटी की निशानी बाबा ने बताई थी। तो अगर हम समझकर चलते हैं तो सामने वाली आत्मा को भी सुख महसूस होता है। अगर हम वहां रिएक्ट करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद में आ जाते हैं, टकराव खड़ा कर देते हैं, तो वो सुखदेव का लक्षण नहीं है, है ना? सुखदेव, सुख देने वाली आत्मा बाबा कहते हैं ना कि राई को पहाड़ बनाने वाली नहीं, लेकिन पहाड़ जैसी बात को भी राय बनाने वाले। हमारी ही बहने हैं, हमारी ही बेटियां हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है ना। जैसे लौकिक परिवार में एक दृष्टि रहती है कि भाई मिलके चले, जो जैसे हैं एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके चले, जब तक कोई ऐसी अति की बात ना हो, हम रिजेक्ट नहीं करते हैं किसी को, निकाल नहीं देते हैं परिवार से कि भाई ये बहन नहीं चाहिए, दूसरी बहन, ऐसा लौकिक में हम नहीं करते। कि जो हमें कर्मिक अकाउंट से संबंध मिले हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, निभाते हैं, चलाते हैं, यही कोशिश रहती है कि परिवार बना रहे। तो वही चीज अलौकिक परिवार में भी है ना, कि हम जिस भी सेंटर में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। और ये परिवार बाबा ने किस लिए बना के दिया है? हमारा परिवार बाबा ने किस लिए बनाया? कि हम आपस में मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करें। एक अकेला संपूर्ण बन नहीं सकता, उसे मदद चाहिए। हम मिलकर संपूर्ण बने और हम मिलकर विश्व सेवा का जो ये बाबा का प्रोजेक्ट है, योजना है, कारोबार है, उसको हम कंप्लीट कर सके। एक ब्रह्मा बाबा के होते हुए भी बाबा ने अनेक ब्राह्मणों को आप समान बनाया। क्यों? क्योंकि कोई एक से यज्ञ संपन्न नहीं होना है ना, सर्व के सहयोग से यज्ञ संपन्न बनना है। तो हमारा इसलिए बाबा ने ये पारिवारिक रूप दिया, पढ़ाई के हिसाब से विद्यालय का रूप दिया, और आत्माएं चूंकि भावना वाली हैं और अलौकिक मंजिल पर पहुंचने में मदद तो चाहिए, तो बाबा ने ये परिवार बनाया। हम एक दो में हिम्मत भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, अनुभव की बातें शेयर करते हैं। तो परिवार तो इसलिए बाबा ने बनाया है, तो हमें उसी अर्थ से इस परिवार का उपयोग करना है, ताकि हमारा इस परिवार में सदस्य बनना इस परिवार को और संगठित बनाने वाला हो, समीप लाने वाला हो, सहयोग का वातावरण रचने वाला। पर जब हम बाबा और सेवा को भूल जाते हैं, व्यक्तिगत इच्छाओं में चले जाते हैं, या अपने अहम को हम ज्यादा महत्व देते हैं, तो टकराव की बात आ जाती है। तो अपने अहम की तो बात ही नहीं है, चाहे मैं समर्पित हूं तो भी मालिकपना मेरे में नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए। चाहे क्लास में आने वाले भाई बहने हैं, स्नेही सहयोगी हैं, हर कोई बाबा से डायरेक्ट बंधा है, और बाबा से हम सब बंधे हैं, इसलिए हम आपस में बंधे हैं, तो हमारे में भी अहम ना आए। और इच्छाओं की तो कोई बात ही नहीं है, संगम युग तो है ही, संपूर्ण बनने के लिए, महायोगी बनने के लिए, बहुत ऊंचे आध्यात्मिक बनने के लिए हैं। संगम युग में तो हमें कोई पावर पोजीशन, कोई और इच्छाएं तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी सभी शुद्ध इच्छाएं पूरी कर देता, शुभ तुम्हारी जो तमन्नाएं हैं, कामनाएं हैं, वो मैं पूरी करता। और हम है ही ज्ञानी तो आत्माएं, लौकिक भौतिक सांसारिक अल्पकाल की ऐसी कोई इच्छाएं तो है ही नहीं, कोई स्वार्थ की बात ही नहीं है। यहां हमें कोई और चीजें तो प्राप्त करनी नहीं है, ये तो बाबा का कार्य है। तो अगर हम सभी व्यक्तिगत रूप से ये लक्ष्य रखते हैं, कि निस्वार्थ होकर, क्योंकि जब तक निस्वार्थता नहीं आती है, हम निष्पक्ष नहीं रहते। और हमारे व्यवहार में जब इम्बैलेंस आता है, पक्षपात होता है, तो आत्माएं कोई ना कोई दुखी हो जाती है। हमें तो ईश्वरीय परिवार की भी दुआएं चाहिए, बाकी आत्माओं की तो दुआएं मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हम तो दुनिया वालों की सेवा करते हैं ना। तो जो लोग ज्ञान में नहीं है, बाकी सभी आत्माओं से हमें दुआएं मिलेगी, क्योंकि हमारा उनके लिए शुभ भावना है, हम उनके लिए मनसा सेवा करते। बाकी दो क्षेत्र है जहां हमें विशेष ध्यान देना है, एक लौकिक परिवार और एक अलौकिक परिवार। डायरेक्ट जहां हम कनेक्टेड हैं, वहां हमें बहुत ध्यान से चलना है कि ऐसा कोई व्यवहार ना हो जाए, ताकि कोई आत्मा को ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, या ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए था मुझे ना मिला। तो वो जो अंदर से आत्मा दुखी होती है, वो वाइब्रेशंस फिर हमें भी योगी नहीं बनने देंगे। पर ये हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, हमें दूसरों को नहीं देखना है। सब ऐसे चले तो मैं चलूं, वो तो बात बनेगी ही नहीं ना। बाबा कहते हैं ना, तुम अपनी जिम्मेवारी लो कि मुझे ऐसे चलना है। जैसे आज दादी ने सुबह हम सबको कहा कि रोज बाबा मीठे बच्चे कहते हैं, तो हम भी अटेंशन रखें कि हमें मीठे बोल बोलने हैं, है ना। हमारे ऐसे कोई बोल ना हो कड़वे व्यंग के, कि उस आत्मा को दुख लगे। जैसे बाबा हम कोई मीठे है थोड़ी कंप्लीटली, कुछ ना कुछ कड़वापन तो हम सब में है, पर बाबा तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप देखते हैं, और बाबा इतना प्यार से भरपूर है कि सिर्फ कहने खातिर नहीं, दिल से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, और वो हमें लगता है कि सिर्फ कहने के लिए बाबा नहीं कहता है, पर ये दिल का प्यार है, क्योंकि हमारा अनादि स्वरूप बाबा देखते हैं, हमारा आदि स्वरूप बाबा याद रखते हैं, हमारा भविष्य बाबा याद रखते हैं। तो वही चीज हमें भी अभ्यास में लानी है कि हम हर आत्मा के गुण देखें, विशेषता देखें, आत्मा रूप में देखें, बाबा की नजर से देखें, तो ना भावना हमारी किसी भी आत्मा के लिए बिगड़ेगी, ना वाणी हमारी बिगड़ेगी। व्यवहार बिगाड़ने तो ने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कर्म का हिसाब हम जानते हैं, और हम ज्ञानी आत्माएं हैं, बहुत ऊंची प्राप्ति बाबा से की है हम सब ने, तो हमारा कर्म पर तो कंट्रोल है, इसलिए इतना तो हमारे अंदर संयम हो कि कुछ भी हो जाए, हमारा आवाज ऊंचा ना हो जाए, हमारा बोलना गुस्से वाला ना हो जाए, हमारे मुख से ऐसे असत्य शब्द ना निकले, है ना। एक है रियल बात करना, और एक है बढ़ा चढ़ा के करना। तो मैं समझती हूँ कि हम आत्माओं को ये इतना तो संयम है ही, पर समय अनुसार, क्योंकि हम मन की स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी बात में बिगाड़ने का भी काम कर देंगे, तो हमारा पुरुषार्थ तो घूम फिर के फिर जीरो होता रहेगा। बाबा ने मुरली में कहा था ना कि एक बार किया हुआ, जोर से किया हुआ गुस्सा उस व्यक्ति को 6 मास तक भूलता नहीं है, याद रहता है, क्योंकि उस आत्मा को अंदर इतना दुख हो जाता है। तो हमारा जो रोज ओम शांति बोलना, ओम शांति सुनना, ओम शांति की स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ है, वो फिर खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता रहता है। तो आपस में चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सर्टिफिकेट तो यहाँ से ही लेना है ना, बाकी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर वो थोड़ी जानते है ना। हम मनसा से सबके साथ जुड़े हैं, और अधिकतर हम भाई बहने मनसा सेवा करते हैं, योगदान देते हैं विश्व की आत्माओं को और प्रकृति को, पर प्रैक्टिकल में तो जिससे रिलेटेड है वो हम आपस में है, लौकिक और अलौकिक, है ना। और जब इस लक्ष्य से पुरुषार्थ करते हैं तो समझ में आता है कि सचमुच बाबा ने, दादियों ने, हमारे बड़ों ने, है ना, हमको कितना सहा है, हमारे कैसे भी व्यवहार को उन्होंने चलाया है, प्यार दिया है, फिर शुभ भावना दी है, माफ किया है, फिर हमें आगे बढ़ाया है, उठाया है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि हम आत्माओं को प्यार से, रूहानी प्यार से चला सके, और जब शांति और प्यार से चलाते हैं, पवित्रता तो हमारा फाउंडेशन है, उसके बाद आगे के ये पुरुषार्थ की बात है। तो आत्माओं को सुख अनुभव होता है, खुद को भी सुख अनुभव होता है, है ना। हमें कोई सुखदाता कब लगता है, सोचो ना, है ना। बहुत हम सबके संपर्क संबंध में आते हैं, पर कोई व्यक्ति हमें सुखदाता कब महसूस होता है? ऐसे थोड़ी होता है कि कोई चीज दे, कोई एक्स्ट्रा दे दे तो सुखदाता लगे, ऐसा थोड़ी है। बाबा ने कहा ना, मर्यादा में रहकर सुख देना, जो यज्ञ की व्यवस्था है, नियम मर्यादा है कि भाई मुझे सबको एक गिलास दूध देना है, तो उस मर्यादा में ही रहना है ना। ऐसा तो नहीं है मैं 4 गिलास एक को ही दे दूं तो उनको मैं बहुत सुखदाई लगूंगी, वो बात नहीं है। सुख नियम मर्यादा अनुसार ही देना है, पर चीज की बात नहीं है, हमारा भावना, हमारा दृष्टिकोण, उस आत्मा को ऊंची नजर से देखना, सहयोग की भावना, समझने का लक्ष्य, तो हम सुखदाई महसूस होते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको बाबा के इस गुण को स्वयं में भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम एक दो के प्रति सुखदेव हैं, है ना? क्योंकि हम सब एक जन्म के साथी नहीं हैं, है ना? आधा कल्प सतयुग त्रेता में भी हम ही एक दो के साथ आएंगे और आगे भी हमारे ही आपसी संबंध रहने। तो और आत्माओं के लिए तो शुभ भावना है, योगदान है, है ना? कोई भी नई आत्मा आती है तो कितना प्यार से ज्ञान देते हैं। पर जो ज्ञानी तो आत्मा बन गई है, जिनसे हम रिलेटेड कनेक्टेड है, वहां हमारा अच्छा मन वचन कर्म, शुभ भावना, शुभ बोल, सुखदाई व्यवहार, तो हम आपसी हिसाब किताब से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे और हम उड़ सकेंगे। बाबा ने कहा ना, हद बेहद से पार जाना है। तो लौकिक अलौकिक हर संबंध के हिसाब किताब को हम ठीक बना देंगे तभी तो हम उड़ सकेंगे, कोई चीज हमें खींचेगी नहीं। तो मधुबन में आए हैं, बाबा मिलन के लिए हम आए हैं, बहुत अच्छी तरह हम बाबा का आह्वान करने बैठते हैं और मधुबन के बेहद वातावरण में सबसे न्यारा खुद से साक्षी बनकर हमें स्वदर्शन करने का मौका मिलता है कि जिन जिन गुणों के बाबा सागर है वो गुण हमारे अंदर कितना है। और सुख देने का गुण आएगा तो अपने आप सहयोग भी आएगा, शुभ भावना भी आएगी, सब अपने आप और गुण, है ना, तालमेल बिठाना, ये सब गुण अपने आप हमारे अंदर आएंगे। तो हम बाबा की याद में बैठते हैं और स्वदर्शन करेंगे, स्व चेकिंग करते हुए कुछ संकल्प हम पक्का कर लेते हैं। ओम शांति। दो मिनट सभी खड़े हो जाएं ताकि आगे भी एक घंटा और हमें बैठना है, तो अपना शरीर ठीक कर ले, हाथ पांव सब ठीक कर लीजिए। अपने अपने स्थान पर खड़े होते हुए पूरा एक राउंड लगाइए खड़े खड़े और बहुत प्रेम, शांति और सुख की शुभ नजर से दृष्टि दे दीजिए। खुद ही राउंड चक्कर लगा के खड़े खड़े अपने स्थान पर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए योगी की दृष्टि महासुखकारी, वो सुखकारी नजर से सभी आत्माओं को निहाल करें। तीन अभ्यास खड़े होकर करेंगे, फिर आप बैठेंगे। अपने अनादि गुण स्वरूप को फिर से अंडरलाइन कर लें। ओरिजिनली मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा दुख की कोई फीलिंग मुझ में न रहे। इस जीवन में जो कुछ हुआ, जब भी हुआ, जिससे भी हुआ, जहां भी हुआ, एक्यूरेट हुआ है। कल्याणकारी है। इसलिए दुख की फीलिंग को खत्म करना है। दुख की फीलिंग आत्मा को मुरझा देती है, नया जन्म अलौकिक जन्म राइट साइड घूम जाए। सर्व के सुखदाता सदा सुखदाता बाबा की मैं संतान हूँ। स्वयं सुखी रहे, सर्व को सुख दें, हम दुखी हो जाएंगे तो कौन हमें सुख सागर की संतान समझेंगे। वापस लेफ्ट साइड घूम जाए, बाबा के सामने हो जाइए और लेफ्ट साइड घूमिए। हम सुख की दुनिया स्थापन करने के निमित्त है। सुखों से भरपूर संपन्न दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं। सर्व को सुख देना है, सर्व से सुख लेना है। राइट साइड घूम जाए, बैठ जाए। महसूस करें बाबा ने हमें कैसे सुखी बनाया। कितनी ऊंची नजर से देखा, हमारे लिए शुभ भावनाएं रखी। हमें बाबा ने प्यार किया, अपना स्वीकार किया, हमें नित्य समझाया, बार बार समझाया, हमारे में हिम्मत भरी, हमारे ऊंचे भविष्य की शुभकामना रखी। एक का हजार गुना मदद की, तो बाबा सुखदाई अनुभव हुआ। मुझे मास्टर सुखदाता बनना है, वो ही मार्ग फॉलो करना है। मेरा अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष हर आत्मा के लिए पशु पंछी प्रकृति जगत के लिए शुभ बना रहे कल्याणकारी बना रहे हम जाने अनजाने सबके लिए सुखदेव हैं बाबा ने हम आत्माओं को बहुत सुख दिया है प्यार दिया है हर क्षण साथ दिया है हम में शक्ति भरी वो ही खजाना बांटना है